ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से दिनेश अरोड़ा और पत्रकार अदिति टंडन।
केंद्रीय कैबिनेट ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। डॉक्टर अरोड़ा, आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट का जो अनाउंसमेंट है वो पहले तो वित्त मंत्री के बजट भाषण में हमने सुना था। आयुष्मान भारत सुनने में ही बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लगता है। इसके दो अहम हिस्से हैं। एक ये है कि आप प्राथमिक स्वास्थ्य को ध्यान देंगे। विलेज लेवल पर जो सब सेंटर्स आज तक बनाए गए हैं उनको एक इस तरीके से अपग्रेड करेंगे कि विलेज के स्तर पर ही बहुत सारी कम्युनिटी को बहुत सी हेल्थ सर्विसेज मिल जाएं और उनको बहुत आगे छोटी छोटी बीमारियों के लिए ना जाना पड़े, डायग्नोस्टिक की सर्विसेज और स्क्रीनिंग की सर्विसेज। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है आयुष्मान भारत का वो है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जिसके तहत ये कह रहे हैं आप कि 5 लाख का एनुअल आप फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देंगे 10 करोड़ फैमिलीज को। ये जो परिवार हैं ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में पहले ही लिखित हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ही एक बड़ा प्रोग्राम है और इसको कैसे अचीव किया जाएगा, क्या क्या अभी तक तैयारियां कर चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय और आगे हाल ही के दिनों में क्या होने जा रहा है इस स्कीम को लेकर?
1 फरवरी को वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में स्कीम का अनाउंसमेंट किया था और शायद अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, कल कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। शायद ये इस लेवल का एक फास्टेस्ट होगा जहां से अनाउंसमेंट हुआ और कैबिनेट अप्रूवल हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सभी इस स्कीम में हम लोग जुटे हुए हैं इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। परहैप्स इसे हम स्कीम नहीं कहते, हम इसे मिशन कहते हैं। तो कल नाम भी जो आया है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन अंडर आयुष्मान भारत। इसके दो भाग हैं जैसे आपने कहा। एक है प्राइमरी केयर जो एक वेलनेस सेंटर को डिफाइन करेगा। आज की डेट में सब सेंटर्स पे हमारे पास सिर्फ एक ENM होती हैं या कहीं कहीं जगह एक मेल पर्पस वर्कर होते हैं, लेकिन इसमें अब सब सेंटर पे एक मिड लेवल प्रोवाइडर होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे एक वेलनेस सेंटर का हो, ट्रेडिशनल डॉक्टर्स बैठे और साथ साथ फार्मासिस्ट भी हों, इसके साथ साथ टेलीमेडिसिन टेली कंसल्टेशन भी हों। 12 डिसिप्लिन चुने गए हैं जिनकी वहां पर डायग्नोस्टिक, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट हो सकती है। वहां पर एक तरह से एक के कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है। अब जिन लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर द्वारा से ऊपर जाना है, जैसे ऑपरेशन करवाना है कहीं भी हो, जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है, उसके लिए है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। इसमें तकरीबन सभी सेकेंडरी और सुपर स्पेशलिस्ट टर्शरी ऑपरेशन अलाउड होंगे। 5 लाख तक के लिए आप अपने परिवार के लिए इसे करवा सकते हैं मुफ्त में। इसका जितना भी प्रीमियम या कॉस्ट है वो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स इसको मीट करेंगी। इसमें जितनी भी आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं, मान लीजिए कोई भी आज की डेट में जो प्राइवेट इंश्योरेंस लेता है तो कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं कवर करते हैं, इसमें सारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर होंगी। कुछ समय प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर रहेगा।
बहुत ही सर्विसेज कवर होने का इसमें प्रावधान आप कह रहे हैं डॉक्टर अरोड़ा है। अगर हम ये पूछें आपसे कि कौन से मॉडल के तहत ये अचीव करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, हालांकि वो बहुत ही छोटी स्कीम थी, इसके मुकाबले में हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन हमने उससे कुछ सीखा है। आज जैसे स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने कहा कि पुराने एक्सपीरियंस से सीखते हुए हम आगे जा रहे हैं, तो इंश्योरेंस का मॉडल होगा या ट्रस्ट का मॉडल होगा या मिक्स मॉडल होगा? स्टेट्स को आप काफी फ्लेक्सीबिलिटी दे रहे हैं।
बिल्कुल, जब हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की थी तो उसमें सिर्फ इंश्योरेंस मॉडल था, ट्रस्ट मॉडल अलाउड नहीं था। इसमें फर्क क्या है? ट्रस्ट मॉडल में सरकार वो सभी रोल खुद करती है जो इंश्योरेंस कंपनी को करने हैं। ये एक बेहतर मॉडल है, पर इसके लिए गवर्नेंस कैपेबिलिटीज चाहिए। जैसे आज स्टेट में जैसे आंध्रा, तेलंगाना कर रहे हैं, पहले वो इंश्योरेंस मॉडल से स्टार्ट हुए थे, फिर बाद में वो शिफ्ट किए ट्रस्ट मॉडल्स को। तो इसी तरह हम लोगों ने कॉन्शियसली ये प्लान किया है कि स्टेट्स की कैपेबिलिटीज इंक्रीज की जाए और उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। जो स्टेट चाहेंगे इंश्योरेंस मॉडल में वो इंश्योरेंस मॉडल में जा सकते हैं, जो स्टेट ट्रस्ट मॉडल में करना चाहे ट्रस्ट मॉडल में कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर कहीं मिक्स्ड मॉडल भी है तो उसको भी हम अलाउ कर रहे हैं, यानी कि कुछ लिमिट तक इंश्योरेंस मॉडल और उसके ऊपर ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब एक एश्योरेंस है कि सरकार आप जितना भी पैकेज है ट्रीटमेंट लीजिए, सरकार उसका भरपाई करेगी उसके पैसे का।
अरोड़ा जी, अगर हम बेनिफिशरीज की बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में करीब 10 करोड़ परिवारों को आंका गया है पुअर और वल्नरेबल के क्राइटेरिया पे। उसके अलावा भी आज स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जो बेनिफिशरीज हैं वो भी इसमें समाहित हो जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि 10 करोड़ फैमिलीज को आप कैसे वैलिडेट करेंगे, ये कैसे जानेंगे? जैसे आप ये भी कह रहे हैं कि स्कीम में परिवार के साइज का कोई लिमिट नहीं है, 5 लाख का जो एनुअल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है वो सबको मिलेगा ही मिलेगा, तो किस तरीके से? अगर मैं एक बेनिफिशियरी हूं तो मैं क्या डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगी हॉस्पिटल में? आप कह रहे हैं कि कैशलेस है, पेपरलेस है, तो क्या क्या प्रावधान मेरे लिए करेंगे आप?
ये बताना चाहूंगा कि ये एक एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है, एनरोलमेंट बेस्ड स्कीम नहीं है। अगर आपके पास आधार है तो आपको कुछ और ले जाने की जरूरत ही नहीं है। आधार मतलब अगर आप बायोमेट्रिक अंगूठा भी लगा देंगे, जिसकी प्रावधान होगा हर हॉस्पिटल में, वो केवाईसी से चेक हो जाएगा। और अगर आप एंटाइटल्ड हैं उस स्कीम में, जो एक सर्च इंजन हर कंप्यूटर पर लगा होगा हर हॉस्पिटल में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड आईडी है, चाहे वो राशन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या कुछ स्टेट्स में जैसे भामाशाह हो या स्मग्र है अगर मध्य प्रदेश में, तो वो भी अलाउ किए जाएंगे और एनकरेज किया जाएगा कि जिसके पास आधार नहीं है वो आधार ले ले, लेकिन किसी को डिनाई नहीं किया जाएगा। तो एक बहुत ही कम्प्यूटराइज्ड ऑनलाइन सिस्टम होगा फॉर एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिफिकेशन। और अगर आप उस एससीसी की लिस्ट में हैं, जो एक बहुत ही वेल डिफाइंड क्राइटेरिया से बनी हुई है, तो आपको 100% ट्रीटमेंट मिलेगी मुफ्त एज पर द प्रोविजन ऑफ स्कीम।
अरोड़ा जी, अगर तो ये स्कीम आप लोकल हेल्थ अथॉरिटीज के हाथ में छोड़ देंगे तो एक्सक्लूजन की कंप्लेंट्स आएंगी। बहुत से डेटा में से बेनिफिशरीज अक्सर एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो आप ये कैसे निर्धारित करेंगे कि अगर मैं बेनिफिशरी हूं तो मुझे ये पता हो कि मैं बेनिफिशरी हूं? क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि मेरा नाम एससीसी डेटा में लिखा हुआ है, शायद मैं ये जानती भी ना हूं।
इसके लिए हमने रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय की मदद ली है। अभी 14 अप्रैल से वो एक ग्राम स्वराज अभियान कर रहे हैं, जहां ग्राम सभा की मीटिंग होगी और डिफरेंट डिफरेंट भारत सरकार के प्रोग्राम्स होंगे, तो उसमें से एक दिन आयुष्मान भारत को दिया जाएगा। तो आयुष्मान भारत के जितने भी बेनिफिशरीज हैं उस ग्राम सभा के, ग्राम सेवक द्वारा, एएनएम्स द्वारा, आशा द्वारा, वो लिस्ट पब्लिश की जाएगी। वो लिस्ट पब्लिश करके वहां लोगों को बताया जाएगा। जो लोग ग्राम सभा में नहीं भी आ पाएंगे, उनके घर घर जाकर आशा प्रचार करेंगे कि ये आपका नाम है, ये आपका नंबर है, आप इस स्कीम में एंटाइटल्ड हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ हम प्रिंट, विजुअल मीडिया, आपके माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो से भी सबको बताना चाहेंगे कि ये ग्राम सभा का जिस दिन भी दिन निर्धारित होता है, उस दिन लोग ग्राम सभा में जाएं और अपनी एंटाइटलमेंट का चेक कर लें। वो लिस्ट वहां लगाई भी जाएगी, पढ़ी भी जाएगी, और इसके बाद डोर टू डोर विजिट भी होगा।
तो क्या आप हर बेनिफिशियरी को एक कार्ड देंगे, जो कार्ड लेके वो हॉस्पिटल जाएगा, क्या लेके हॉस्पिटल जाएगा?
इस स्कीम के लिए कुछ जरूरत नहीं है। वैसे हम एक ई कार्ड दे रहे हैं आधार जैसा, जो आप एक चिट्ठी में भी जा सकता है, जिसको आप लैमिनेट करवा के रख लें या अपने घर में रख लें, वो कार्ड आप लेके जा सकते हैं। उस कार्ड पे एक क्यूआर नंबर होगा, ई कार्ड पे, जो क्यूआर नंबर कार्ड कहीं भी मशीन पढ़ सकती है कि आपकी बेनिफिशियरीज कौन कौन है, और उसके बाद आपकी अगर आइडेंटिटी टेस्ट हो जाती है तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर द स्कीम।
तो मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय हर एक फैमिली को, जो बेनिफिशियरी फैमिली है, उनको एक पत्र लिखेगा जिसके माध्यम से ये ई कार्ड उन तक पहुंचाएगा।
ये भी प्रपोजल में है।
अगर हम सर्विसेज की बात करें डॉक्टर अरोड़ा, तो ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 1300 ऐसी पैकेजेस आप लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें तमाम सेकेंडरी और टर्शरी, जिसमें कैंसर हो गया, किडनी रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कवर होंगी। क्या आप इसको थोड़ा विस्तृत तौर से बता सकते हैं कि लोगों को क्या लाभ होगा?
कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन है आपकी, एक्सेप्ट फॉर ए नेगेटिव लिस्ट, आप उसमें अलाउड होंगे। चाहे वो कार्डियोलॉजी है, यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, पेट का है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स है, आई का है, ऑप्थल्मोलॉजी है, तो डिफरेंट कैटेगरीज में जो भी ये कॉमन डिजीजेज हैं मोस्टली कवर्ड होंगी। सेकेंडरी तो ऑलमोस्ट सभी कवर्ड होंगी, टर्शरी में कुछ छोड़कर मोस्ट ऑफ देम विल बी कवर्ड। हेल्पलाइन नंबर बताएंगी, उसमें भी सब बताया जाएगा कौन सी कवर्ड है, और जौन सी डिजीज भी कवर्ड है उसके लिए इट्स अ कैशलेस थिंग। किसी भी बेनिफिशियरी को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी भी अस्पताल।
और अरोड़ा साहब, अगर किसी ने पैसे मांगे तो वो बेनिफिशियरी कहां जाएगा?
वो तो ना सिर्फ शिकायत कर सकता है वहां पे कंसर्न हॉस्पिटल में, या वहां के सीएमओ को, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, या एजेंसी को। एक हम शॉर्ट कोड हेल्पलाइन भी करेंगे जिसमें वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जिसमें हर कॉल रिकॉर्डेड होगी और इसका जांच की जाएगी। अगर कोई भी एजेंसी, हॉस्पिटल दोषित पाए गए तो उनके अगेंस्ट एक्शन होगा, वो पीनल एक्शन से लेके ब्लैकलिस्टिंग तक जा सकता है।
धन्यवाद।
सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से दिनेश अरोड़ा और पत्रकार अदिति टंडन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।